श्रीशुक उवाच इति सह विदुरेण विश्वमूर्ते गुणकथाया सुधया प्लावितो रुतापः क्षणमिव कुलीने यमस्वसुस्ता समुषिता औपगभीर्निशान्ततो गाता श्रीशुक उवाच इति सह विदुरेण विश्वमूर्ते गुणकथाया सुधया प्लावितो रुतापः क्षणमिव कुलीने यमस्वसुस्ता समुषिता उपगभीर्निशान्ततो गाता श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा इति इस प्रकार सह साथ विदुरेना विदुर के विश्वमूर्ते विराट पुरुष का गुण कथया दिव्य गुणों की बातचीत के दौरान सुधया अमृत के तुल्य लावितुरुतापः अत्यधिक कष्ट से अभिभूत क्षणम क्षण युवा सदृश पुलिने तट पर यमस्वसुताम उस यमुना नदी के समुषितः बिताया औपगवी औपगव का पुत्र उद्धव निशाम रात्रि ततः तत्पश्चात आगात चला गया। अनुवाद और तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद के अनुवाद शुकदेव स्वामी ने कहा हे राजन इस तरह यमुना नदी के तट पर विदुर से भगवान के दिव्य नाम यश गुण इत्यादि की चर्चा करने के बाद उद्धव अत्यधिक शोक से अभिभूत हो गए। उन्होंने सारी रात एक क्षण की तरह बिताई तत्पश्चात वे वहां से चले गए। तात्पर्य यहाँ पर प्रश्न के लिए विश्वमूर्ति शब्द का प्रयोग हुआ है। उद्धव तथा विदुर दोनों ही भगवान कृष्ण के प्रयाण से अत्यधिक दुखी थे। वे भगवान के दिव्य नाम यश तथा गुणों के बारे में जितनी अधिक चर्चा करते गए उतना ही उन्हें भगवान का चित्र सर्वत्र दृष्टिगोचर होने लगा। भगवान के दिव्य स्वरूप का ऐसा मानस दर्शन न तो मिथ्या है न काल्पनिक अभी तो वास्तविक परम सत्य है। जब भगवान को विश्वमूर्ति के रूप में देखा जाता है तो वे न तो अपना व्यक्तित्व खोते हैं न ही अपना दिव्य नित्य स्वरूप अपितु वे सर्वत्र उसी रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधश्च ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे कृष्ण। तो बिल्कुल प्रिपेयर नहीं हूँ आज, मैंने सोचा समय को कंटिन्यू करने के लिए कुछ चैतन्य चरितामृत से एक अध्याय पूरा पढ़ लेते हैं, जिससे हम 9 बजे तक कृष्णदास कविराज से सुनते रहेंगे। शुकदेव गोस्वामी यहां उनका जो वर्णन है, विदुर और उद्धव का जो संवाद का वर्णन उन्होंने किया, और वो फिर फाइनली बता रहे हैं कि किस प्रकार से उद्धव वैष्णव सदाचरण का पालन करते हैं, और वो सोचते हैं जिस जैसे पिछले श्लोक में वर्णन करते हैं श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में, मर्यादा व्यतिक्रम मर्यादा पालन है साधुर भूषण। कृष्णदास कविराज कहते हैं, जैसे हमने सैटरडे भी यही चर्चा की थी, मर्यादा का पालन करना ये साधु का भूषण है। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को कहते हैं, तुम्ही ना करे ले करे कौन जन, हे सनातन तुम मर्यादा का पालन नहीं करोगे तो कौन करेगा इस संसार में मर्यादा का पालन। तो हमें भी अपने भक्तिमय जीवन में हर एक वर्ण और आश्रम की मर्यादा है, उस मर्यादा के बाहर हम कदम डालते हैं तो अपना जो आध्यात्मिक जीवन है हम विनष्ट करने के लिए क्या करते, स्वयं ही प्रवृत्त होते हैं। ये वैसे ही है जैसे अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार लेना, क्योंकि जब हम मर्यादा का उल्लंघन करते हैं तो हमें पता होता है कि ये उचित नहीं है मेरे भक्तिमय जीवन के लिए, अनुचित है। लेकिन हम इतने अधिक आसक्त होते हैं, जैसे शराबी है, शराब पीने में बहुत आसक्त होता है तो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, वैसे ही हमें पता है कि मेरे वर्ण और आश्रम के अनुसार ये जो चीजें हैं वो उचित नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, मर्यादा का लंघन करते हैं और फिर माया हमें कैप्चर कर लेती है। जैसे उस दिन भी मैंने कहा था, सीता देवी ने मर्यादा का उल्लंघन किया, उसके लिए लक्ष्मण रेखा वो मर्यादा की रेखा थी, लक्ष्मण ने वो मर्यादा की रेखा वह डाली थी, लेकिन सीता देवी ने उसको पार किया। उसको बताया गया था, बारंबार वार्निंग दी गई थी, समझाया गया था कि आपके प्रोटेक्शन के लिए उचित है। तो उसी प्रकार से साधु गुरु शास्त्र हमें मर्यादा की शिक्षा देते हैं, लेकिन हम उस मर्यादा का पालन नहीं करते हैं। और जब बड़ी विपत्ति आध्यात्मिक जीवन में सामने खड़ी हो जाती है तो हम फिर किसी और को दोष देना शुरू करते हैं, लेकिन वास्तव में जितनी बड़ी हानि हम स्वयं के आध्यात्मिक जीवन के लिए खुद कर सकते हैं उतनी बड़ी हानि दूसरा कोई नहीं कर सकता। जैसे प्रभुपाद ने कहा कि ये जो मूवमेंट है इसको कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, बाहर का कोई भी शक्ति नहीं है जो इस आंदोलन को रोक सकती है या डिस्ट्रॉय कर सकती है। ये डिस्ट्रॉय होगा, खत्म होगा तो कैसे, अंदर के ही भक्तों के द्वारा। तो वैसे ही यदुवंश के बारे में हम देखते हैं, भगवान यदुवंश ऐसा उनका वंश था, उसको बाहर की कोई शक्ति विनष्ट नहीं कर पाई, लेकिन अंदर ही शक्ति के अंदर ही अंदर के लोगों के द्वारा इन वन सेंस वो डिस्ट्रॉय हो गई। तो उसी प्रकार से उद्धव अपनी मर्यादा को जानते हैं और वो क्या करते हैं, विदुर को भेजते हैं, और भेजने से पूर्व उस रात्रि में जैसे श्लोक में वर्णन आया है, गुण कथाया सुधया, कहते हैं कि भगवान कृष्ण के जो नाम रूप गुण लीला ये कैसी है, सुधया अमृत के समान है। इसलिए तो श्रीमती राधा रानी कहती है, श्याम नामे कतो मधु आछे गो, हे सखी केनो सुनाइला श्याम नाम, हे सखी आपने मुझे है ये शाम का नाम क्यों सुनाया? हाँ, जब वृंदावन के वनों में श्रीमती राधिका अपने सखियों के संग में विचरण करती हैं, तो सखियों को कहती है कि आपने ये शाम का नाम क्यों मुझे सुनाया? हाँ, क्योंकि शाम के नाम में क्या है? अत्यधिक मधु है, स्वीटनेस है। हाँ, वो कहते कि जैसे ही काने कान से प्रवेश करता है और हृदय में हलचल मचा देता है, इतना ही मधुर कृष्ण का नाम। इसलिए भगवान के जो कथा है, उनके गुण है, उनकी लीलाएं हैं, उन सब की तुलना अमृत से की गई है। अमृत से तुलना भी उचित नहीं, अमृत से भी बढ़कर है। अमृत से उसका लेन देन नहीं किया जा सकता। जैसे देवता भी शुकदेव गोस्वामी के पास आते हैं अमृत का कलश लेकर, और शुकदेव गोस्वामी से क्या कहते हैं कि अमृत तो ये परीक्षित को पिलाओ, मरने वाला है, लेकिन हमें क्या पिलाओ? कृष्ण कथा अमृत। तो भौतिक जीवन में जो हमारी जो अग्नि है, भौतिक ज्वाला है, जिसमें हम सब लोग तप रहे हैं, हाँ, सुबह सुबह हम चांद करते संसार दावाग्नि, हाँ, तो वो दावाग्नि से राहत हमें केवल एक ही चीज से मिल सकती है, और वो क्या है? भगवान का गुण कथाया, नाम रूप गुण लीला, इनमें रममान होना, यही एक भक्त के जीवन का परम लक्ष्य है। कृष्ण प्रेम क्या वस्तु है? ऐसे नहीं कि कृष्ण प्रेम कोई एक अलग से वस्तु हमारे पास आएगी, इन्हीं चीजों में डूबना ही कृष्ण भावना है, कृष्ण प्रेम है। इसलिए जो उद्धव है और विदुर है, ये दोनों इतने मग्न हो गए थे, कृष्ण कहते गीता में मच्छितः मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। ये तो भगवत भक्ति और भगवान के भक्तों का लक्षण है कि वो कथयन्तश्च माम नित्यं, मेरे जो कथा है गुण कथा आदि, उसमें नित्य रूप से लगे होते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि उसमें अत्यधिक आनंद है, अमृत का अनुभव उन्हें प्राप्त होता है, अमृत से भी बढ़कर है। इसलिए शुक्रदेव गोस्वामी कहते हैं कि पूरी रात्रि इस तरह बताई बिताई इन दोनों में, ऐसे लगा कि एक क्षण बीत गया हो। इसलिए महाप्रभु क्या कहते हैं, युगायतम निमेषेन चक्षुषा प्रावृषायतम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेन में। तो चैतन्य महाप्रभु भी उसी भावना को हम प्रकट करते हैं। तो अत्यधिक भगवान के प्रति आसक्ति का ये बहुत बड़ा उदाहरण है। इसी कारण से चैतन्य भागवत में हमें वर्णन मिलता है कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त हैं, कृष्ण के नाम रूप गुण लीला में वास्तव में अमृत से बढ़कर वो अनुभव कर रहे हैं। हम तो हमें अमृत अनुभव नहीं होता, लेकिन विषयों के उपभोग में हमें अमृत महसूस होता है। इस संसारिक जीवन में सर्वाधिक जो सर्वोत्कृष्ट सुख जिसे कहा जाता है इस पृथ्वी में, वो क्या है? मैथुन जीवन है। ये जो पांच इंद्रियों के द्वारा, ये पांच इंद्रियों का समुच्चय जीव को प्रदान किया है, जिसके द्वारा वो भौतिक आनंद ढूंढता है और वो लगा हुआ है। इसलिए कृष्ण कहते मन शस्तानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। कब से ये कर्षण संघर्ष हो रहा है उसके जीवन में, हजारों हजारों जन्मों से, करोड़ों करोड़ों जन्मों से वो केवल स्ट्रगल कर रहा है अपने इंद्रियों को लेकर और मन को लेकर, केवल सुख की अभिलाषा के लिए। लेकिन उसको सुख की अनुभूति एक क्षण के लिए भी महसूस नहीं होती। इसलिए भौतिक संसार में जो सर्वोच्च सुख है वो क्या है? एक स्त्री और एक पुरुष का जो मिलन है। इसलिए भागवतम में वर्णन आता है कि इस संसार में उसको कहते स्वर्ग सुख। उस सुख की लालसा के लिए जीव भगवत सुख को भी त्यागने के लिए तैयार है, भगवत सेवा के लिए भी क्या है? तैयार हो जाता है। जो भगवान ने क्या किया, स्वर्ग में जो सुख है उसका एक क्षण जो छोटा सा सुख है उसकी अनुभूति इस संसार में मैथुन जीवन में उन्हें रखी है। इसलिए प्रहलाद कहते हैं मैथुन आदि ग्रह में दिन सुखम ही तुच्छम। क्यों प्रहलाद बोल पा रहे हैं? प्रहलाद क्या ऐसी अमेजिंग थी वस्तु जो प्रहलाद कह रहे थे ये भौतिक सुख भी क्या है, तुच्छ है। क्यों? क्योंकि प्रहलाद भगवान के नाम में अमृत का अनुभव कर रहे हैं। प्रहलाद सदैव भगवान के नामों का उच्चारण करते थे और जिसके कारण वो ये कह पा रहे हैं, अनुभव कर पा रहे हैं कि ये जो भौतिक सुख है वो तुच्छ है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के जो अनुयायी हैं वो केवल भगवत या आध्यात्मिक सुख की कामना करते हैं, आध्यात्मिक रस की कामना करते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के एक अमेजिंग डिवोटी थे। क्या नाम था उनका? खोला वेचर श्रीधर। खोला वेचर श्रीधर के बारे में हम हमेशा सुनते हैं। चैतन्य भागवत में उनका वर्णन आता है, खोला वेचर श्रीधर प्रभुर प्रिय दास जहां सने प्रभु करे नित्य परिहास। कि खोला वेचर श्रीधर चैतन्य महाप्रभु के बहुत प्रिय सेवक थे और एक जिनके साथ चैतन्य महाप्रभु सदैव परिहास किया करते थे। निमाय पंडित के रूप में जब वो नवदीप में निवास करते थे, कोलावेचर श्रीधर रोज अपनी जो जीविका है केले का वृक्ष आदि खरीदते थे, उसके अलग अलग टुकड़े करके उसमें से अलग अलग वस्तुओं को बनाकर उनको बेचा करते थे। अब उनसे जो उनको आमदनी होती थी वो 50% गंगा की सेवा में लगाते थे और 50% खुद के लिए रखते थे। लेकिन एक चीज उनके जीवन में अमेजिंग थी, वो क्या थी कि नित्य प्रति वो भगवान के नामों में मग्न रहा करते थे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के इतने प्रिय थे कि चैतन्य महाप्रभु एक भी दिन ऐसा नहीं बिताते थे नवदीप में कि कुछ ना कुछ बहाना बनाकर इस खोला वेचर श्रीधर के पास जाते थे और खोला वेचर श्रीधर से हमेशा वो उनकी वस्तुएं खरीदते थे। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु श्रीवास पंडित के घर में, श्रीवास पंडित के घर में क्या करते हैं, अपना जो दिव्य स्वरूप है उसको प्रकट करते हैं और वो कहते हैं कि मैं अलग अलग भक्तों को वर देना चाहता हूं। श्रीवास पंडित के घर में जो अल्टर था उस अल्टर की शिलाएं, शालिग्राम शिलाएं अपने गोद में लेते हैं और महाप्रभु महाभाव प्रकाश लीला जिसे कहते हैं महाभाव प्रकाश लीला, चैतन्य महाप्रभु जाकर उनके अल्टर में बैठते हैं, शालिग्राम शिलाएं अपने गोद में लेते हैं और अलग अलग भक्तों को बुलाते हैं और उनको विशेष वर प्रदान करते हैं। हरिदास ठाकुर को जब बुलाया, हरिदास ठाकुर को कहा हरिदास मांगो, कुछ मांगो मुझसे। और हर एक भक्त को वो ये रियलाइज करवाते थे कि किस प्रकार से मैं आपके जीवन में आया और किस प्रकार से मैंने आपके ऊपर कृपा की। हरिदास ठाकुर को कहा हरिदास तुम्हें याद है जब तुम्हें 22 बाजारों में पीटा जा रहा था, कोड़े मारे जा रहे थे, तुम्हें वहां चक्र लेकर उन सबका विनाश करने के लिए तत्पर था, लेकिन एक चीज एक प्रार्थना तुम्हारी जब मैंने सुनी कि तुम कहते हो कि इन लोगों को पता नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं जो मुझे मार रहे हैं, हे कृष्णा इनको क्या करो क्षमा करो, कहते तुम्हारी इस प्रार्थना ने मुझे रोक के रखा था। और उतना ही नहीं, जब तुम्हारे ऊपर कोड़े पड़ रहे थे तो वो कोड़ों को मैं अपने पेट पर ले रहा था। तो कोई पूछ सकता है क्या कोई साक्षी है उसका, क्या प्रमाण है? तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे मुड़ते हैं कहते देखो मेरे पीठ को देखो, हाँ तो सारे कोड़ों के निशान किनके पीठ पर थे, चैतन्य महाप्रभु के। तो हरिदास ठाकुर के आगमन से अश्रु प्रवाह होता है और महाप्रभु कहते हरिदास मांगो, तो कहते हैं हरिदास ठाकुर क्या मांग रहे होंगे, इतने बड़े नाम के आचार्य और इतने मांगने का जब मौका मिल रहा है तो मांगते हैं कि हे गौरदेव गौरांगदेव कि आपके भक्तों का जो उच्चिष्ट है वही एकमात्र मेरा धन बन जाए जीवन में, बस उन्होंने जो ग्रहण किया उच्चिष्ट प्रसाद है वही मुझे प्राप्त हो जाए, उससे परे मैं आपसे कुछ आकांक्षा नहीं करता। ऐसे ही जब महाप्रभु ने कहा श्रीधर को बुलाओ, अरे कई डिवोटीज को श्रीधर भक्त पता ही नहीं था, हमें तो मेनली फेमस डिवोटीज पता रहते हैं। हाँ, कुछ जो नॉर्मल भक्त है जिनको हम ज्यादा परिचित नहीं है उनके बारे में हमें पता ही नहीं रहता, जो छुपे भक्त है। तो श्रीधर कोई इतने फेमस डिवोटी नहीं थे, लेकिन वो भगवान की सेवा में फिक्स थे। तो ऐसे श्रीधर, श्रीधर कोला में श्रीधर का नाम महाप्रभु ने पुकारा और सारे कुछ भक्त निकल गए उस रूम से, दौड़ते हुए गए रात्रि में ढूंढने के लिए कि कौन है कोला बेचा है। कोला बेचा श्रीधर है। तो जब कोला बेचा श्रीधर को ढूंढते हुए गए तो सब जगह ढूंढा, कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि ये कौन है, कहाँ रहता है। लेकिन रात्रि में उनको जोर जोर से आवाज सुनाई दी। क्या आवाज सुनाई दी? कि कोई व्यक्ति अपने कुटिया में बैठकर जोर जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम का उच्चारण कर रहा है। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं यही मत नवद्वीपे आछे महाशय खोला वेशा ज्ञान करी केह नाचिनाय। ऐसे एक महाशय भक्त थे। ये महाशय टाइटल कोई सर्वसाधारण टाइटल नहीं है। नरोत्तम दास ठाकुर अपने प्रेम भक्ति चंद्रिका में लिखते हैं राधा रज चरणाश्रय करी सही महाशय। नरोत्तम दास ठाकुर को यह टाइटल जीव गोस्वामी ने दिया था। क्यों दिया था? सर्वप्रथम उन्होंने देखा कि पूरे वृंदावन में भगवान राधा कृष्ण की जो मानसिक सेवा है करने में सर्वश्रेष्ठ कोई डिवोटी है गौड़िया में, तो वो नरोत्तम दास ठाकुर है। हाँ, मानसिक सेवा राधा कृष्ण की, इसलिए उनको बुलाया। और वो घटना आपने सुनी होगी नरोत्तम दास ठाकुर के जीवन में। फिर जीव गोस्वामी ने उनको ये उपाधि दी महाशय, कि वास्तव में जिन्होंने एकांत राधे का आश्रय, राधा रानी का आश्रय स्वीकार किया है वो वास्तव में महाशय है। तो यहां भी उनको कहते हैं इस प्रकार से डिवोटेड है इतने उन्नत श्रीधर कोलागच्छ श्रीधर, लेकिन कोई भी उनको पहचान नहीं पाता। हम तो अपने भक्तिमय जीवन में क्या करते हैं, दिखाना चाहते हैं कि मैं कितना अच्छा डिवोटी हूं, कितना बेटर, मेरे पास कितने स्किल्स हैं, कितनी योग्यताएं हैं। इन सबको हम क्या करते हैं, दिखाना चाहते, शो करते हैं, जैसे एक वेश्या होती है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं कि कई बार जो शुद्ध भक्त हैं वो उनको देखने से पता नहीं चलता, हमें सब शास्त्रों में सुनते पढ़ते हैं अस्त विकारों के बारे में। तो उनको पूछा कि क्यों ऐसा है कि शुद्ध भक्त दिखाता नहीं है, शो नहीं करता अपने उन्नत अवस्था को। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं वो वेश्या के समान नहीं है। वेश्या तो अपना अंग प्रदर्शन करके हाव भाव सारे जनता को दिखाती फिरती है। उसी प्रकार से जो ढोंगे डिवोटीज है और न्यूफाइट है, क्या कहते हैं, नव दीक्षित, वो दिखाते हैं, वो शो बोटल डिवोटी प्रभुपाद कहते हैं। और इसी कारण से ये जो श्रीधर थे उनको कोई पहचान नहीं पा रहा था, सर्वसाधारण भक्त के समान रहते थे। अब उत्तम हैया अपना के माने अधम, उत्तम होकर भी उनकी चेतना क्या थी, मैं अधम हूं। तो आगे वो कहते हैं चारि प्रहर रात्रि निद्रा नाही कृष्ण नामे सर्वरात्रि हरि बले दीर्घल अवहने। चारि प्रहर रात्रि में जब ऑफिस से वापस आते थे, आज पहले तो वो अपना कार्य करते थे, आजकल के लोग ऑफिस से घर आते हैं, तो रात्रि भर और उनके घर में और कोई नहीं था, अकेले थे श्रीधर। और वहां श्रीधर की एक कुचिया थी घास की, और जिसमें सारी सूर्य की रोशनी अंदर आ जाती थी ऊपर से, ऐसे नहीं कि विंडो से आ रही है, खिड़की से आ रही है, फिर दरवाजे से आ रही है, और बारिश भी अंदर आ जाते थे।
और ऐसे श्रीधर कोलामेश्वर श्रीधर पूरी रात्रि में निद्रा नहीं आती थी उन्हें। कोई कहेगा ऑफिस का स्ट्रेस लेके घर में आते होंगे टेंशन को लेकर, या घर में कोई पत्नी या बच्चे परेशान करते होंगे इसलिए सो नहीं पाता बेचारा, इसलिए भागवतम में आकर क्या करता है सोता है, ऐसे नहीं। तो कोलामेश्वर श्रीधर तो रात्रि में निद्रा नहीं आती, क्यों? क्योंकि कृष्ण नाम में इतने आसक्त थे। हाँ यही तो लक्षण है। हाँ कि जैसे प्रभुपाद जब रेस्ट करते थे तो वो कहते थे कि मेरा मैं अपना क्या कर रहा हूं टाइम वेस्ट कर रहा हूं, थोड़ा सा रेस्ट कर दे तो भी। हाँ तो इस प्रकार से अव्यर्थ कालत्व, तो ये जो श्रीधर है इतने अधिक नाम उच्चारण में आसक्त थे कि नाम का उच्चारण उनसे रोका नहीं जाता था पूरी रात्रि में। ऐसे नहीं कि बहुत धीरे से बोल रहे हरे कृष्ण ताकि कोई सुने ना, जैसे एक पास टाइम में पढ़ रहा था रिसेंटली भक्ति और ठाकुर का, तो उनके जो पड़ोसी वगैरह कहते हैं एक मैगजीन में था कि ये जो स्वानंद सुखुंद कुंज है जालंगी नदी के उस पार नवद्वीप में, जब वहां भक्ति और ठाकुर रहने के लिए आए तो रात्रि में ऐसा जब करते थे कि जोर जोर से आवाज, पड़ोसी कहते थे कि घर हिल रहा हो उनका, ऐसा हरि नाम लेते थे रात्र भर भक्ति रो ठाकुर। वैसे ही ये श्रीधर इतना जोर से हरि नाम लेते थे, हरि बले दीर्घल आह्वाने, दीर्घल मीन्स लाउडली, मंगला में कहते कि लाउडली उच्चारण करते थे, जते कपाशंडी बले श्रीधरे रडाके रात्रि निद्रा नाही चाहा दुई कर्ण फाटे। पाषंडी जो अभक्त है वो क्या करते थे श्रीधर के नाम से चिल्लाते रहते थे, उनकी निंदा आदि करते थे और कहते थे कि ये जो श्रीधर है जिन्होंने हमारा जीना हराम कर दिया है, क्या कर दिया है, रात्रि में हमें नींद नहीं आती उसके चिल्लाने से और हमारे कान क्या करता है ये फाड़ देता है, कान के पर्दे इतना लाउडली उच्चारण करता है। महाचाशा बेटा भाते पेट नाही भरे सुधाय क्षुधाय व्याकुल हैया रात्रि जागी मरे। वो कहते महाचाशा, महाचाशा मीन्स अनारी गवार होता है ना, वो कहते गांव का गवार व्यक्ति है बेटा भाते पेट नाही भरे, क्योंकि इसको खाने के लिए कुछ मिलता नहीं है, भूखा रहता है इसलिए नींद नहीं आती। हाँ जब हम प्रसाद मिस करते 5 बजे का तो रात में सही में नींद नहीं आती, केवल प्रसादम का ही चिंतन होता है, जो भी मिले हाँ वो डालते अंदर। तो ये लोग सोचते थे इसको नींद नहीं आती, क्यों? क्योंकि इसको इसका पेट नहीं भरा हुआ, जिसके कारण क्षुधाय व्याकुल, भूख के कारण व्याकुल रहता है इसलिए रात्र भर जागता है। यह अनुभव आपको होगा निर्जला के समय, निर्जला एकादशी में याद है नींद आती है रात भर नहीं, कितना अंतर है, उस समय हरिनाम नहीं होता हमसे, देखते कि सूर्योदय कब होगा, सूर्योदय कब होगा। कल मैं एक महाराज का लेक्चर सुन रहा था तो निर्जला के दूसरे दिन दिल्ली में लेक्चर दे रहे थे तो देखा कि भक्त लोग बहुत कम है प्रवचन में, तो वो कह रहे थे क्योंकि क्योंकि सारे लोग रात भर इस निर्जला के त्रस्त से ग्रस्त होकर जगे हुए हैं इसलिए सुबह भागवत में कोई नजर नहीं आ रहा है। तो वैसे ही हमें हमारी ये दशा है, दुर्दशा। तो भक्त दौड़ के गए और ये श्रीधर कोलावेचर श्रीधर को मिले और कहा कि चलो चलो आपको चैतन्य महाप्रभु बुला रहे हैं, विश्वंबर निमाय पंडित उनका नाम था, चैतन्य महाप्रभु नाम नहीं था उस समय, आपको निमाय बुला रहे हैं या विश्वंबर बुला रहे हैं। उनका नाम सुनने मात्र से कि मुझे बुला रहे हैं श्रीधर पंडित मूर्छित हो गए, वहां मूर्छित होकर गिर पड़े भूमि पर, भक्तों ने उठ के ले गए। भक्त लोग महाप्रभु के पास गए और चैतन्य महाप्रभु तो अल्टर में भगवत आवेश में है, वो अमेजिंग लीला है, सारे भक्तों से महाप्रभु मिलते हैं चैतन्य भागवत की वो जो वर्णन है। तो चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि श्रीधर कोलावेचर श्रीधर सामने अभी खड़ा है, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं
श्रीधर देखिया प्रभु प्रसन्न हैला, आयस आयस बले डाकिते लागिला। चैतन्य महाप्रभु ने देखा मेन गेट से एंट्री हो रही है अंदर दरवाजे से। महाप्रभु कहते आइए आइए श्रीधर, आपका आगमन हो, आइए यहाँ। विस्तर करिया छ मोर आराधान, बहु जन्म मोर प्रेम तेजिला जीवन। उन्होंने कहा तुमने मेरी बहुत विस्तार पूर्वक आराधना की है बहुत जन्मों से, यही जन्म मोरे सेवा करिला विस्तर, तुमार खोलाय अन्न खाए निरंतर। और इस जीवन में भी तुमने मेरी बहुत सेवा की है, और मैं रोज कोई केले का पत्ता यूज करता हूं तो किसका, तुम्हारे द्वारा दिया हुआ। महाप्रभु खुद खरीदने जाते थे, इनका छोटा सा दुकान था वहां, जाते थे और उनसे कहते थे फ्री में दे दो मुझे। जैसे इस्कॉन डिवोटीज भी जाते ना, कि आप भक्त लोग हैं आप पैसे दे दो, हाँ फ्री में लेना चाहते सारी चीजें। तो वैसे उन्होंने कहा मैं ब्राह्मण हूं, हाँ आप वैसे ही मुझे दे दो कुछ। हाँ थोड़ा झपटा झपटी करके कुछ बातें करते हुए निमाई पंडित कुछ ना कुछ हड़प ही लेते थे, और उनको आनंद आता था। किनको? और श्रीधर कोला में जो श्रीधर देखते थे, आज अभी तक क्यों नहीं आया। एक प्रकार से वो बहुत खींचातानी करके ले जाते थे, फोकट का मांगते थे, लेकिन वो नहीं आते तो भी श्रीधर को क्या था, कष्ट होता था, अरे निमाई क्यों नहीं आया आज। तो महाप्रभु कहते हैं कि तुम्हारा खोला या अन्न खाई निरंतर, तुम्हारा जो ये केले का पत्ता आदि जो चीजें मैं लेता हूं उसके मैं ग्रहण करता हूं। और चैतन्य महाप्रभु और वो कहते हैं कि नहीं नहीं मैं फ्री में नहीं दे सकता, गंगा की पूजा करने के लिए मुझे धन की आवश्यकता होती है। तो ये कहता है गंगा, ये गंगा तो गंगा का तो पिता हूं मैं, वो मेरे पाँव से निकली हुई है। कहते विष्णु विष्णु कान बंद करते, हे ब्राह्मण तुम क्या बोलते जा रहे हो। तो इस प्रकार से वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि क्या खासियत थी कि महाप्रभु स्वयं उनके पास जाते थे खाने के लिए। भक्तेरा पदार्थ प्रभु है न मते खाए, कोटी है ले वो अभक्तेरा उलटी ना छाए। वो कहते यही खासियत है, उसमें क्या था, प्रेम था, भक्ति थी, जिसके कारण महाप्रभु स्वयं उनके पास जाते थे, हाँ और वो सब चीजें लेते थे, उनको खाते भी थे। और जो अभक्त है उसके पास करोड़ों व्यंजन क्यों ना हो, वृंदावन दास ठाकुर कहते उलटी ना चाहे, भगवान ऐसा मुड़ के भी नहीं देखते पीछे कि अभक्त ने मेरे लिए क्या बनाया है, कौन सा व्यंजन है, भगवान उसको स्वीकारते नहीं ना दृष्टिपात डालते हैं। तो इस प्रकार से जब कोलावेचर श्रीधर उनके सामने आए तो महाप्रभु ने कहा कोलावेचर श्रीधर मेरी स्तुति करो। ये कई भगवत लीलाओं में हम देखते हैं, भगवान को बड़ा आनंद आता है कोई उनके सामने खड़ा हो जाए और उनका गुणगान करे, क्योंकि हमें भी आनंद आता है कोई भक्त हमारी प्रशंसा करता है स्तुति करता है तो हमें अच्छा लगता है। तो कोलावेचर श्रीधर को कहा कि कोलावेचर श्रीधर आप मेरी स्तुति करो। महाप्रभु ने श्रीवास पंडित को भी जाकर कहा। एक बार चैतन्य महाप्रभु गंगा के किनारे जा रहे थे तो उन्होंने गाय देखी, गाय को देखकर उनको लगा मैं कौन हूं, कृष्ण हूं, वृंदावन का आवेश। दौड़ते हुए गए श्रीवास पंडित के घर में, श्रीवास पंडित अंदर पूजा में व्यस्त थे, जाके दरवाजे में लात मारी, अरे जिसके अंदर पूजा कर रहे हो तुम्हारे दरवाजे में खड़ा है, पत्नी बच्चों के साथ पूरा थाल लेके आओ, मेरी आराधना करो और मेरी स्तुति करो। देखो तो भगवान कहते मेरी स्तुति करो, तो स्तुति करना भी हमें सीखना चाहिए। भागवतम क्या है, भागवतम में एक ही चीज है, स्तुतियां है। हाँ जितने भी भक्तों ने भगवान की भागवतम भरा हुआ है कृष्ण की स्तुतियों में, और सर्वप्रथम स्तुति किसकी है, कुंती महारानी। हाँ देखो भगवान कुंती महारानी की स्तुति को स्वीकार करते, फिर भीष्म की है, पूरे भागवतम में जितने भी पास टाइम है वो स्तुतियों से भरे हुए हैं। तो महाप्रभु कहते मेरी स्तुति करो, तो कोलावेचर श्रीधर ने कहा तो महाप्रभु ने अपना रूप दिखाया,
हाते मोहन बंशी दक्षिणे बलराम, कृष्ण बलराम का रूप उनको दिखाया, ऐसे खड़े हो गए हाते मोहन बंशी और साइड में बलराम। तो उनको कहा बोलो कुछ तो बोलो। तो श्रीधर कहता है प्रभु मैं तो मूर्ख व्यक्ति हूं, मुझे मेरे पास कुछ है नहीं बोलने के लिए। ये वैसे जैसे हमें किसी को क्लास के लिए बिठाया जाता है और कहते प्रभु जी मेरे पास कुछ है नहीं, हम किसी को बोलते हो क्लास दो तो कहते क्या बोलूं मैं, ये भी एक स्तुति है भगवान की प्रशंसा गुणगान करना। तो वैसे ही उन्होंने कहा कि मैं तो मूर्ख व्यक्ति हूं, मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। तब उस समय जब एटीट्यूड होता है विनम्रता का, उस समय सरस्वती आकर उनके जिह्वा में बैठ जाती हैं और इतनी अमेजिंग स्तुतियां कोलावेचर श्रीधर बोलने लगते हैं, बहुत गुणगान करते हैं कृष्ण का। फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि है कोलावेचर श्रीधर कुछ वर मांगो, मैं तो अष्ट सिद्धियां देने के लिए भी तैयार हूं, राजा बना देता हूं तुम्हें, कुछ मांगो मुझसे। तो कोलावेचर श्रीधर तो वो तो सोच कोई छोटा सा कोई केले के पत्ते बेचने का दुकान है तो वो क्या मांगेगा, बड़ा सा कोई शॉप हो जिसमें कुछ और चीजें हो तो क्या मांगते हैं। श्रीधर बले प्रभु देह एवर जेब्रा मन काड़ी नीला मोर खोला पात। वो कहते हैं कि आप मुझे एक वर दे दो, जय ब्राह्मण काड़ी नील मोर खोला पात से ब्राह्मण हऊक मोर जन्म जन्म नाथ। वो कहते जिस ब्राह्मण ने मेरा रोज एक केले का पत्ता आदि लेके जाता है उससे वही मेरा जन्म जन्मों में क्या बने, स्वामी बने, बस नाथ, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहता। उन्होंने कहा रे ऐसे चीज कहते राजा बना देता हूं। तो कोलावेचर श्रीधर कहते राजा के पास भी चार चीजें, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। कोलावेचर श्रीधर का अमेजिंग वो पास्ट टाइम है, कभी आपको समय मिलता है तो चैतन्य भागवत में पढ़ी है। तो वहां और किसी चीज की याचना नहीं करते, यही तो महाप्रभु के भक्तों की खासियत है। न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामये, मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहेतु कित्वई। लेकिन हमारी खासियत क्या है, हा धनम हा जनम हा सुंदरे हा हा सब हा हा नारा नहीं हा? तो हा हा से क्या होगा, जीवन में हाहाकार मचेगा नहीं। तो इस प्रकार से हम देखते कि कोलावेचर श्रीधर भगवान से केवल एक ही चीज चाहते हैं कि आप मेरे स्वामी हो और मैं आपका सेवक। यही तो रियलाइज करना है, ये सारे शास्त्र अध्ययन सेवाएं ये सब करके एक ही चीज अनुभव करने की है, कृष्णा आप मेरे प्रभु हो और मैं आपका तुच्छ सेवक हूं। यही आत्म साक्षात्कार है, यही भगवत साक्षात्कार है। हाँ यही तो प्रभुपाद के पास एक डिवोटी गया दीक्षा होकर, उसका कुछ और दीक्षा का नाम पड़ा था, नाम तो इतना अच्छा नहीं लग रहा था, क्या मुझे नाम दे दिया। तो गए प्रभुपाद के पास, प्रभुपाद ने कहा देखो देखो भाई, ऐसे तो नहीं बोला, देखो हाँ ये जो नाम है उसमें पीछे का जो अक्षर है ना दास, वो रियलाइज करना है, आगे से कुछ लेना देना नहीं है, दास पर काम करो। तो बहुत समझ जाता है। तो इस प्रकार से यही आत्म साक्षात्कार है कि यह अनुभव करना कि कृष्ण मेरे स्वामी हैं और मैं उनका तुच्छ सेवक हूं। तो इस प्रकार से ये जो सरलता का भाव है कोलावेचर श्रीधर का, क्यों क्यों ऐसी भावना उनके हृदय में है, कोई और चीज की अपेक्षा नहीं करते, क्योंकि उन्होंने नामामृत को चखा है। जब हम भगवत नाम रूप गुण लीला को चखने लगते हैं तो ये संसारिक सुख आदि तुच्छ प्रतीत होता है। शून्यायतम जगत सर्वम, अभी तो भगवत सुख शून्य लग रहा है क्योंकि ये हमें अनुभव नहीं कर पा रहे हैं उसको, इसलिए तो ये सिंसियर सिंसियरिटी है एक प्रकार से इनके अंदर कोलावेचर श्रीधर। तो हमें भी वो भावना हमारे अंदर विकसित करनी है तो हमें क्या करना चाहिए। अब सोचो जो नारद थे दासी पुत्र, उनके अंदर भी यही भावना थी। तो यदि हमें कोलावेच श्रीधर की इस भावना को विकसित करना है तो हमें तीन चीजें करनी पड़ेगी सीरियसली, और वो क्या है, वे सीढ़ी। कौन सी सीढ़ी? वे सीढ़ी। पहले होता था ना वे सीढ़ी, डीवीडी, ऑडियो सीढ़ी। तो वे सीढ़ी का मतलब है, वे का मतलब है वैष्णव की सेवा करना, हाँ, उनकी वपु वाणी, उनके वाणी का भी पालन करना आदेशों का, और उनकी वपु सेवा। वैष्णव में गुरु भी इंक्लूड है। वे मीन्स वैष्णव, हाँ, से मीन्स क्या, हाँ, अटेंटिवली, हाँ, चार्जिंग करना हरि नाम का, और प्रयास करना अधिक से अधिक हरि नाम के प्रति आसक्त होने का। और डी का मतलब है डेली प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ना। तो ये चीजें नहीं होगी हमसे तो हमारे अंदर कभी भी ये भावना नहीं आएगी, न धनम न जनम, हाँ, हम तो इसी में रहेंगे, हा धनम हा जनम। तो इसलिए शास्त्र और आचार्य हमें प्रेरित करते हैं कि यदि हम वास्तव में कृष्ण नामामृत, कृष्ण गुणामृत, कृष्ण रूपामृत, कृष्ण लीलामृत को पीना चाहते हैं तो हमें इन तीन चीजों पर काम करना होगा गंभीरता से, अन्यथा और कोई गति नहीं है। केवल हम अपने कार्यों किए हुए कर्मों के फलों से हम रोते रहेंगे। भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा, गोपीनाथ आरत गति ना है, मैं देख रहा हूं मेरे जीवन में और कोई गति महसूस नहीं कर रहा हूं। हाँ, तो इस प्रकार से कोलावेच श्रीधर का ये अमेजिंग पास टाइम है जिससे हम कई सारी शिक्षाएं ले सकते हैं। तो यहाँ दो डिवोटीज उद्धव और विदुर, ये कृष्ण के गुण सुधाया, भगवान के नाम रूप गुण लीला उनको अमृत के समान लग रही है, हमें तो नहीं लग रही है। तो अमृत के समान तभी हमें महसूस होगी जब हम इन तीन चीजों को कंटिन्यूअसली करते रहेंगे, तभी हमारा जो जीवन है वास्तव में धन्य हो सकता है, और उसी के लिए हम यहाँ आए हैं। तो इस प्रकार से विदुर और उद्धव, उद्धव आखिरी शब्द उनको बोल रहे हैं कि आप क्या करिए, आप जाइए मैत्रेय मुनि से मिलिए, और मैत्रेय मुनि से, क्योंकि मैत्रेय मुनि को भी भगवान ने उपदेश दिया था जब वो इस जगत से प्रयाग करने वाले थे। प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि जितना अधिक हम भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं की चर्चा व्यक्ति करता है उतना ही उन्हें भगवान का चित्र सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है। तो मतलब ये चरणिक प्रोसेस है, जितना अधिक हम इसमें मग्न रहेंगे, लगे रहेंगे, उतना ही कृष्ण विजिबल होने लगेंगे। इसलिए तो कहते हैं कि जहां जहां नेत्र पड़े तहां तहां कृष्ण स्फुरे, जहां जहां भक्त देखता है उसको कृष्ण का ही स्फुरण स्फुरित हो जाते हैं। ये तभी होगा जब हम चरणी करेंगे गंभीरता से इन चीजों पर। इसलिए भक्त का यही जीवन है। हमें बाकी चीजों में आलसी हो जाए तो बहुत अच्छा है माया के कार्यों में, लेकिन किसी चीज के लिए उत्साह दिखाना है तो इन चार चीजों के लिए, या तो फिर चार चीजें हमें बांधेगी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि सोचो, या फिर नाम रूप गुण लीला, दोनों में से एक ऑप्शन है। तो नाम रूप गुण लीला में जितना भक्त मग्न होगा, उनकी जितनी अधिक चर्चा करेगा, श्रवण कीर्तन आदि करेगा, उतने ही कृष्ण उसको सर्वत्र दृष्टिगोचर होंगे, और वही व्यक्ति वास्तव में ब्रजवासी है। जैसे गोपिकाएं हैं, वो इतनी अधिक मग्न थी कृष्ण के नाम रूप गुण लीलाओं में कि एक भी दिन उनको ऐसे नहीं रहे लगता था कृष्ण के बिना। वो सदैव वनों में भ्रमण आदि करते हुए कृष्ण के इन चीजों में मग्न रहा करती थी, तब वो कृष्ण को कभी भी नहीं भूल पा रही थी। तो हमें भी यदि प्रयास करना है तो इसकी शुरुआत होती है किस चीज से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर हरिनाम शिद्धामणि में लिखते हैं, नामे प्रस्फुटित है रूप गुण लीला, कि नाम के अंदर ये तीन चीजें रखी है भगवान ने। जब व्यक्ति नाम का आश्रय लेता है तो ये तीन चीजें उसके लिए नेचुरली ऐसे प्रकट होती है, जैसे फूल ऐसे उमलने लगता है। जितना जितना भक्त उन्नत होता है, जितना इन चीजों में मग्न होता है, कृष्ण उस फूल की भांति रिवील होने लगते हैं और उस सुगंध महसूस करते हैं। जैसे फूल बंद है तो इतना सुगंध नहीं हम अनुभव करते हैं, लेकिन जैसे ओपन होता है तो उसकी सुंदरता, उसका सुगंध हम अनुभव करते हैं। उसी प्रकार से भक्त का जीवन है, कृष्ण अभी हमारे लिए क्लोज फूल के समान है, लेकिन वो क्या होंगे जब हम इसमें लगेंगे चार चीजों में, विशेष रूप से हरि नाम का उच्चारण करने में, तो ये अच्छी पूरा जो पुष्प है हाँ ये सब खुलेगा। कृष्ण की नाम रूप गुण लीला हाँ और अधिक हमें रिवील होने लगेगी। हाँ इसलिए प्रभुपाद कहते कि चरणी प्रोसेस है। हाँ चरणी के लिए हाँ पॉट क्या है, बर्तन कौन सा है, हृदय है, और रस्सी कौन सी है, माला है। रस्सी क्या है, माला है। तो इस प्रकार से हम घिसते रहे, चरणी करें नाम रूप गुण लीलाओं का, और इसमें आलसी ना हो। तो इसलिए हम उस भावना का विकास करना है, तो जैसे हमने कहा वी सीढ़ी वैष्णव की सेवा, और दूसरा है चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र, और तीसरा है डेली हाँ प्रभुपाद के ग्रंथों को नित्य रूप से पढ़ना ही पढ़ना है, उसी के लिए हम बैठे हैं। अदरवाइज हमें एक दिन देखेंगे, यदि हम इन चीजों में नहीं मग्न होंगे तो माया हमें एंगेज करेगी, और फिर देखेंगे कि फिर हाँ हमारी सहायता करने के लिए कोई नहीं है। तो सहायता कौन करेगी हमारे, ये तीन चीजें हैं हमें अंत समय में सहायक होगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवता की समवेत गौर भक्त वृंद की, श्रील प्रभुपाद की गौर प्रेमा।